बच्चों, आज 27 जून 2020 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, प्रेरणादायक हो। आप सबको भगवान की सेवा का, जनता जनार्दन की सेवा का सब से प्राप्त हो और आप सब मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो। मंगलाचरण तब कथाम जीवन करम शाप शवन मंगलम श्रीमदा जना। वो तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप तत्व जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है, वह पाप को हमने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है, वह परम मधु तथा शुभ स्थित है। जो तुम्हारी प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। श्रीमद् भागवत 10:31। आज मैं आपको कल की यात्रा से अगली ओर आगे की ओर ले जाती हूँ। अगस्त 1983 में जो घटनाएं घटी हैं, जो प्रसंग आए हैं, उनको सूक्ष्म रूप में आपको बताने जा रही हूँ। इन दिनों श्री महाराज जी त्रिलोकनाथ की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व श्री महाराज जी ने कहा कि बाबा को काजा जाना है, क्योंकि वहाँ उनके प्रिय भक्त रामचित्र जी, जो PWD में सर्विस करते हैं, हैं? वो वहाँ पे हैं। तो बाबा ने कहा, श्री महाराज जी ने कहा कि बाबा को काजा जाना है। तो रामचित्र जी से बातचीत हुई, रामचित्र जी ने कहा बहुत ठीक है स्वामी जी, मैं आपको ले चलूंगा। लेकिन बात एक है कि ढालपुर जाकर ऑफिस में आपको साइन देने होंगे, आपका एक किस्म का वीजा बनेगा। तो महाराज जी ने कहा चेतन कि बाबा नहीं जाएगा, बाबा नहीं जाएगा, छोड़ो। तो क्या करें, तो प्रोग्राम बनाया कि काजा ना जाकर तो लोकनाथ जाया जाए। और रामचित्र जी ने कहा ठीक है बाबा जी, स्वामी जी आप तो लोकनाथ जाएंगे तो मैं काजा से नहीं आपके पास आ जाऊंगा। इसलिए अब फाइनली ये हुआ कि श्री महाराज जी त्रिलोकनाथ यात्रा पर जाएंगे और कुछ भक्त भी उनके साथ जाएंगे। इसलिए भक्तों ने हिमाचल पेट्रोल की 35 सीटों वाली बस का प्रबंध किया है। दिल्ली निवासी श्री मुनिलाल जी अपनी बेटी प्रेमलता के साथ श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए मंदिर में आए हैं। श्री महाराज जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। 6 अगस्त 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ढालपुर कुल्लू पधारी थी। 7 अगस्त 1984 को प्रातः त्रिलोकनाथ की यात्रा आरंभ हुई। प्रातः 7 बजे अखाड़ा बाजार से भक्त बस में बैठे और मंदिर के सामने जयकारा श्री राम वाली दा बोलकर भजन कीर्तन करते हुए श्री महाराज जी के पुण्य सानिध्य में यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में रायसन और मनाली से भी कुछ भक्त जन सम्मिलित हुए। हमारी बस रोहतांग के लिए चढ़ाई चढ़ रही थी। दोनों ओर फूलों का नंदन वन प्रकृति उपहार स्वरूप खड़े देख रहे थे। कई स्थानों पर श्री महाराज बस रोककर इस नंदन वन में भक्तों सहित उतरे और प्रकृति का दिव्य आनंद लिया। रोहतांग के दरे पर पहुंचकर बस रोकी ताकि भक्त लोग ब्यास कुंड के दर्शन और पूजा कर सके। ये थोड़ी सी दूरी भक्त थी जो इसलिए भक्त लोग पैदल ही गए, परंतु श्री महाराज जी बस के आसपास ही रहे और वहाँ कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लों को भोजन खिलाने में मगन रहे। श्री महाराज जी ने एक बटुए से 100 रुपए का नोट निकाला और प्रचुर मात्रा में डबल रोटियां खरीद ली और प्रेम से उन पिल्लों को खिला दी। जब देखा कि 100 रुपए से काम नहीं बना तो दूसरे पर्स से 100 रुपए निकाल लिए और उनको पिल्लों को फिर से घर पे रोटी खिलाते रहे। जब हम लौटे तो देखा कि जैसे 4-5 वर्ष का बालक उदार भाव से कुत्तों के पिल्लों से खेल रहा है और बार बार उन्हें खाने को दे रहा है, परंतु उनका पेट इतना भर चुका था कि वे खाद्य पदार्थ से मुंह फेर रहे थे। हमें देख श्री महाराज जी ने अपना भाव छिपाते हुए कहा, मम्मी जी, बाबा ने जनक मम्मी के पर्स से 100 रुपए निकाला है और एक और पर्स से 100 रुपया और निकाला है, आप उन्हें पैसे दे देना। जनक मम्मी जी और दूसरी सब महिलाएं श्री महाराज जी की ओर देखकर आनंद लेते हुए हंस पड़े। श्री महाराज जी का ब्रह्म भाव देखकर हम सभी दंग रह गए। ये स्वामी जी स्वयं ही ब्रह्म है, स्वयं ही भगवान है, समझ नहीं आती कुछ भी। लेकिन सब हैरान हो गए कि उसने महाराज जी ऐसे लगते थे मानो ब्रह्म स्वयं साकार रूप में हमारे सामने है। वेदों में कहा गया है ब्रह्म देव ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह मनुष्य स्वयं भी ब्रह्म बन जाता है। वेद की स्तुति का ध्यान आते ही मुझे ऐसा लगा कि श्री महाराज जी सगुण सकुण रूप में ब्रह्म ही है। सायंकाल हम उदयपुर पहुँचे, वहाँ पर शीतल राम शीतल जी पहले ही पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ हमारे ठहरने के लिए PWD का गेस्ट हाउस बुक करवा दिया था। रात को हम वहाँ ठहरे और प्रातः काल त्रिलोकनाथ के दर्शनों के लिए गए। यहाँ बुद्ध और शैव मत का स्पष्ट संबंध देखा। श्री महाराज तो अपने कमरे में गए, हम लोग 3 बजे उदयपुर लौट आए और भोजन कर विश्राम किया। फिर उदयपुर में मातेश्वरी के दर्शनों के लिए, मातेश्वरी का नाम है करगल, मातेश्वरी के दर्शनों के लिए गए। लकड़ी का बना मंदिर, वह लकड़ी पर नक्काशी लगभग 1000 वर्ष के इतिहास की झलक देती है। दर्शनों के उपरांत रात्रि में सब ने भजन कीर्तन किया, तत्पश्चात सब ने शयन किया। 9 अगस्त को हम उदयपुर से कुल्लू की ओर चले तथा रात्रि 8 बजे महादेवी तीर्थ में पहुंच गए। भंडारा गृह में सभी भक्तों को भोजन कराया, भोजनोपरांत भक्त अपने अपने घर चले गए। इस यात्रा में अखाड़ा बाजार से रामलाल जी, उनका परिवार, श्री कृष्णलाल सूद, उनका परिवार सूद, भूपेंद्र जी, ये सब अपने अपने परिवारों को लिए आए थे। और रायसन से सत्य देवी, उनका परिवार, मनाली से दोतराम सूद और हम सब जो भी स्वामी जी के साथ जुड़े हुए भक्त थे, हम सब इकट्ठे होकर के इस यात्रा पर गए थे। और इस यात्रा का हमने महाराज जी के साथ भरपूर आनंद लिया था। त्रिलोकनाथ की यात्रा से श्री महाराज बहुत थक गए, इसलिए अधिकतर समाधि में ही रहते हैं। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए उन्होंने प्रातः 4 बजे ही घंटी बजाई और सबको यथानुसार कार्य सौंप कर पुनः समाधिस्थ हो गए। भारी थकान के कारण 2-4 दिन श्री महाराज बहुत कम बाहर आए। 21 अगस्त मंगलवार के दिन श्री महाराज अधिक अस्वस्थ दिखाई देने लगे। वे अपने बाल भक्तों के साथ भावुक होकर कहते, बाबा का समय आ गया है, बाबा को अब जाना है, बाबा की समाधि बनाओ इत्यादि इत्यादि। कुछ बहने जैसे CMO की धर्मपत्नी तथा स्टेट बैंक मैनेजर की धर्मपत्नी सुषमा ढिंगरा जी तथा श्री प्रेम लता जी मंदिर में आई हुई हैं और वह श्री महाराज जी के पास बैठकर बातचीत करती हैं। श्री महाराज जी ने उनसे कहा, बाबा स्वर्ग में मंदिर बना रहा है, ये मंदिर तो जनता का है, बाबा को तो स्वर्ग के मंदिर में जाना है, बारी बारी बाबा अपने भक्तों को भी बुला लूंगा। उनकी इस अवस्था से द्रवित हो सभी बहने रोने लगी। एक ने कहा, आप कैसे जाओगे, मम्मी जी अकेली रह जाएंगी, मंदिर सोना हो जाएगा। ये सुनकर इन्होंने कहा, मतलब बाबा जी ने कहा, बाबा सूक्ष्म रूप में माँ के पास ही रहेगा। फिर वह धीरे धीरे समाधि में चले गए। कुछ दिन पश्चात शरीर ठीक हुई और श्री महाराज जी पुनः अपने कार्य में लग गए। 26 अगस्त को एक फ्रांसीसी युवक आया और श्री महाराज उससे गले मिले। ये युवक 1983 में भी मंदिर में आया था, तब इसके पास पैसे ना थे, ना ही कपड़े थे और ना ही जूते थे। श्री महाराज जी ने इसे एक सप्ताह मंदिर में अपने पास सुरक्षित रखा और इसको सब सामान ले दिया था और अच्छे से इसकी सेवा की थी। इसलिए ये युवक श्री महाराज जी से मिलने आया है और उनके लिए कपड़े जुराबे आदि भी लाया है। दिन भर वह श्री महाराज जी के साथ रहा और रात्रि निवास भी उसने महाराज जी के पास ही किया। उसी रात लगभग 10 बजे श्री रामलाल ने टेलीफोन करके बताया, ये प्रसंग मैंने आपको पहले भी सुनाया, कि भेदू की मृत्यु हो गई है। भेदू की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी आंखों के सामने 30 जुलाई का दृश्य घूम गया। उस दिन मंगलवार था और श्री महाराज श्री रामलाल जी के घर गए हुए थे। सायंकाल मंदिर लौटते समय जब श्री महाराज की दृष्टि आंगन में बंधे भेड़ू पर पड़ी तो वही बैठ गए और मानव शिशु जैसा उसे प्यार करने लगे। धीरे स्वामी से रोटियां मंगाकर उसे भरपेट खिलाया और उठते हुए कहा, अच्छा अब हम अगले जन्म में मिलेंगे, उसमें हम 20-25 भक्त उनके साथ थे। और ये सब देखकर सभी हैरान हो गए थे। दीनदयाल श्री महाराज जी ने भेदू को इस योनि से मुक्त कर दिया है, ये जानकर सभी बहुत ही आश्चर्यचकित भी हुए और श्री महाराज जी की भरपूर दया जीवों के प्रति प्रेम देखकर प्रसन्न भी हुए। फ्रांसीसी युवक अगले दिन जब मलाना गांव के लिए चला तो श्री महाराज जी ने उसे चावल, चाय, पत्ती, दाल, सब्जी, अचार और पका हुआ भोजन भी दिया। श्री महाराज जी का अतिथि सत्कार अनूठा ही था। एक ओर मंदिर का निर्माण कार्य की वह स्वयं देखभाल करते थे और दूसरी ओर अतिथि सत्कार श्री महाराज जी इन दोनों का विशेष ध्यान रखते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गीता माँ जय माता।